पृष्ठ संख्या 260, अध्याय 26, तबला विद्या का अध्ययन विद्यार्थियों के लिए। तबला वादन साज संगत एवं सोलों के प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। दोनों प्रकार का यह वादन परिणाम कारकता के साथ होने के लिए तबले के विद्यार्थियों को उस विषय की व्याप्ति के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। इसी दृष्टि से प्रथमतः निम्नलिखित बातों का विचार तथा अध्ययन गुरु के मार्गदर्शन से हर प्रगत विद्यार्थी को करना होगा। पहला, तबला वाद्य रचना। तबले के बर्तनों के लिए योग्य लकड़ी का चुनाव, उस बर्तनों के अंतर्गोल आकार, तबले बाएं पर की पूरी और स्याही का स्वरमयता एवं परिणाम कारकता के साथ संबंध। दूसरा, तबले पर निर्माण हो सकने वाले ध्वनि अक्षर, उनका निकास एवं परिणाम कारकता। खुले अक्षर को गूंज युक्त एवं स्वरमयता के साथ बजा सकना, इसके लिए हाथ और उंगलियां कैसी रखी जाएं और नाद कैसे निर्माण किया जाए, इस संबंध का शास्त्रीय दृष्टिकोण से ज्ञान एवं तिट तिरकिट त्रक और धीर धीर अक्षर रेले में कैसे बजाए जाएं, इसके बारे में योग्य मार्गदर्शन एवं कौशल प्राप्त कर लेना। तीसरा, बाएं का सुयोग्य निकास। तबला वादन में चाट और बंद अक्षर महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु बाएं का सरस निकास उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में विद्यार्थी को ज्ञान एवं कौशल हासिल कर लेना चाहिए। बाएं पर दबाव, घिसाव आदि विभिन्न पद्धतियों से विविध कलात्मक घुमारे निकालने की कला उसे अवगत कर लेनी चाहिए, क्योंकि विविध घरानों की रचनाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए उनके अनुरूप निकास शैली का अवलंब करने से वादन की परिणाम कारकता बढ़ती है। चौथा, बंदिशों में बार बार प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द प्रयोगों पर विशेष रियाज। तबला वादन में ऐसे 25 से 30 महत्वपूर्ण शब्द समूह हैं जिनका निकास घराने के अनुरूप अलग अलग होता है। इनका प्रयोग सुसूत्रता के साथ रियाज में करना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे प्रयोग अच्छी तरह से करने की क्षमता प्राप्त होने पर ही उन रचनाओं का वादन करना सुलभ और प्रभावशाली होता है जिनमें उक्त शब्द समूहों का अंतर्भाव किया हो। ये शब्द निम्नानुसार हैं। पहला, धाती, तिट, तिरकिट और त्रक। दूसरा, धिन तिरकिट तक, धीना किट तक। तीसरा, धागे तिट, तागे तिट, धा तिरकिट तक तिरकिट और तिटकत गदिगन। चौथा, धात्रक धिकिट, धागे न धात्रक, धागे न धागे धीन। पांचवा, धागे धीना गीना, धीन धीना गीना, धाती धागे धीना गीना, तीट धागे धीना गीना, त्रक दिंग दीना गीना। छठवा, धीर धीर किट तक, धातिर किट तक। सातवा, धित धित त्रक धित। आठवा, धातक घेतक, दिंग दीना गीना, घे घे तिट घे घे नाना। नौवा, घेड़नग दीननग, घेंतरान, धागे तकिट, तकिट धिकिट। दसवा, धीरकिट तक, धीर धीर किट तक, धीर 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 किट तक, धीर 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 किट तक इत्यादि। पृष्ठ संख्या 261, उपर्युक्त शब्द अलग अलग वादन प्रकारों की रचनाओं में महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इनका निकास प्रत्येक घराने की वादन शैली में बहुतांश में अलग अलग होता है। कोई भी शब्द उनका योग्य निकास के साथ रियाज करने पर परिणाम कारकता से प्रस्तुत हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर प्रथमतः प्रत्येक अक्षर का निकास कैसे होता है यह समझकर विद्यार्थी को वे अक्षर शब्द हाथ पर चढ़ाने चाहिए। उक्त शब्दों का रियाज करने का मतलब केवल शब्दों का रियाज करना नहीं, बल्कि वे शब्द हाथ पर चढ़ने के बाद जिन रचनाओं में वे शब्द आए हैं उन पूर्ण रचनाओं का भी रियाज होना चाहिए, और यह काम गुरु के मार्गदर्शन से ही कराया जाना चाहिए। पांचवा, कायदों का अध्ययन। तबले की शिक्षा के आरंभ में कायदे को प्राधान्य देना चाहिए। कायदे के रियाज से विशेष शब्द हाथ में चढ़ते हैं, तैयार होते हैं। कायदों से वादन विस्तार के सूत्रों का परिचय होता है और परिणामतः विद्यार्थी विस्तार क्रिया में अंतर्भूत घराने के अनुशासन से परिचित होता है, तथा धीरे धीरे वह अनुशासन भी उसे आत्मसात हो जाता है। छठवां, रेलों का अध्ययन। कायदे के साथ ही विद्यार्थी को रेले सीखकर उनका निकास समझ लेना चाहिए, बाद में उनका रियाज करना चाहिए। सातवां, गत टुकड़े आदि का अध्ययन। कायदे रेलों के अध्ययन के पश्चात किम बहुना उनके अभ्यास एवं रियाज के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़े, मोहरे, तिहाइयां, मुखड़े आदि का भी रियाज विद्यार्थी को शुरू करना चाहिए। बाद में उसे खानदानी गत टुकड़ों का अध्ययन करके रियाज करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 262। आठवां, ठेका और ठेका भरी का अध्ययन। तबले का ठेका केवल ठेके के रूप में नहीं बजता, ठेके के प्रस्तुतिकरण में अन्य विविध अक्षरों का कलात्मक रूप में समावेश करके उक्त ठेकों को एक स्वतंत्र सौष्ठव प्राप्त करा देना पड़ता है। ठेका भरी के इस तंत्र एवं मंत्र को गुरु से सीखना होता है, किंतु साथ ही मुख्यतः प्रत्यक्ष संगीत सभाओं में अच्छे तबला वादक जो ठेका भरी करते हैं उनके वादन की सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए मन की एकाग्रता से ठेका भरी के उन तंत्रों को विद्यार्थियों को आत्मसात कर लेना चाहिए। नौवां, श्रेष्ठ तबला वादकों के वादन का निरीक्षण। केवल ठेका भरी ही नहीं, बल्कि कलात्मक एवं परिणाम कारक वादन करने वाले श्रेष्ठ वादकों का तबला भी सुनकर और मन की एकाग्रता के साथ उसे निहार कर उनके वादन के निकास के मार्ग का अध्ययन करके विद्यार्थी को उसे आत्मसात कर लेना चाहिए। दसवां, लय और लयकारी का अध्ययन। तबला लय और ताल दर्शाने वाला वाद्य है। लय को बिना हिले टिकाए रखने की कला विद्यार्थी को अवगत कर लेनी चाहिए। लय का पक्कापन साधने के लिए विद्यार्थी को रोज कुछ समय तक अलग स्वतंत्र रियाज करना चाहिए। वह रियाज इस प्रकार करने से लय पक्की हो जाती है और यह पक्कापन प्रत्यक्ष वादन में अभिव्यक्त होता है। और प्रत्येक ताल और उसका ठेका, ताली खाली की क्रियाएं हाथ से दर्शाते हुए मुंह से पक्केपन के साथ कहना आना चाहिए। ब, संबंधित रचना की एक गुना, ड्योढ़ी, दुगुन इत्यादि लय हाथ से ताली को पकड़कर मुख से अचूकता के साथ कहते रहना चाहिए। क, लय का एक गुना से ड्योढ़ी, दुगुन, तिगुन, चौगुन लय में तथा उल्टे क्रम से अर्थात चौगुण से त्रिगुण, दुगुण, ड्योढ़ी और एक गुण इन इस प्रकार ताली पकड़कर ठेके और कुछ रचनाएं कहने का रियाज छात्र को कर लेना चाहिए। इस ढंग से लय बदलने की क्रिया पर हुकूमत हासिल करने की कोशिश करना आवश्यक होता है। यह रियाज परीक्षाओं के लिए आवश्यक है ही, किंतु ऐसे अभ्यास में लय भी पक्की हो जाती है। वस्तुतः मुंह से रचना कहने के दौरान ही लय पक्की होती है, क्योंकि मूल लय को स्थिरता के साथ दिखाने का कार्य ताली, काल आदि हस्त क्रियाओं से किया करते हैं। कोई भी क्रिया मस्तिष्क के आदेश से हुआ करती है। शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में असली शिक्षा मस्तिष्क में हुआ करती है। तत्पश्चात रियाज की सहायता से वह मस्तिष्क में पक्केपन के साथ स्थिर हो जाती है। जहाँ तक लय की शिक्षा का संबंध है, लय को जान लेना पहली अवस्था है। लय को पक्केपन के साथ स्थिरता पूर्वक बजाने की क्रिया में रखना लय की शिक्षा की दूसरी अवस्था है। पृष्ठ संख्या 263। लय के विविध गुणितों को पक्केपन के साथ दिखा सकना मस्तिष्क की शिक्षा की अगली अवस्था है। मुंह से रचना कहना और साथ ही उसी समय ताली, काल आदि क्रियाओं को हाथ से दर्शाना, ये दो भिन्न क्रियाएं एक ही समय में करने की क्षमता को बढ़ाना मस्तिष्क के लिए, जिह्वा के लिए और लयबद्ध हस्त क्रियाओं के लिए एक प्रकार की उच्च शिक्षा ही हुआ करती है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह केवल शास्त्र का ही विषय नहीं, बल्कि वह एक कला भी है। ड, तबला वादन एक प्रयोगशील कला है। वादक का लय पर का प्रभुत्व वादन के माध्यम से व्यक्त होना प्रत्येक वादक का लक्ष्य होना चाहिए और उसे साध्य करने के लिए परिच्छेद क में सूचित रियाज बहुत उपयुक्त साबित हो सकता है, किंतु विविध गुणितों को मुंह से व्यक्त करने की क्षमता विद्यार्थियों ने प्राप्त की हो तो भी उक्त रचनाएं अपने आप विविध लयों में हाथ से समर्थता के साथ प्रस्तुत हो सकेंगी, ऐसा मानना गैर होगा। उसके लिए तबले पर अलग रियाज करना आवश्यक होता है और विविध लय बजाने के क्रम में ही उन्हें बदलने का रियाज भी विद्यार्थी को कर लेना चाहिए। ये विविध गुणित मूल लय से योग्य नाता रखकर ही हो रहे हैं या नहीं, यह लहरे की मदद से नियमितता से परख कर देखने की भी आवश्यकता है। ई, विविध लय या गुणित कर सकना बहुत मुश्किल काम होता है। फलतः रियाज के जरिए यद्यपि ऐसे गुणित सही ढंग से करने की क्षमता प्राप्त हुई हो तो भी उन्हें प्रस्तुत करने के प्रयत्न में मन की एकाग्रता भी, ये गुणित ठीक तरह हो रहे हैं या नहीं, यह देखने में व्यय होती है। फलतः उक्त रचना के निकास का सौंदर्य वादक द्वारा दुर्लक्षित हुआ करता है। कुछ अंशों में वह अनिवार्य भी होता है, परंतु ऐसा वादन केवल शास्त्र के अंतर्गत गिना जाता है। इस वादन को भी कलात्मक एवं नाद मधुर करने का प्रयत्न वादक को करना चाहिए। विद्यार्थियों की वादन क्षमता की यह अंतिम सीढ़ी है। 11वां, पेशकार का अध्ययन। प्राथमिक कायदे, घरानेदार कायदे, दीर्घ आकार के रेले, गत टुकड़े, विविध तालों के ठेके आदि का पर्याप्त अभ्यास कर चुकने पर ही पेशकार का अध्ययन शुरू किया जाए। विद्यार्थियों को परीक्षा के दृष्टिकोण से शुरू में पेशकार की रचना और कुछ पलटे दिए जाते हैं और उन्हें वे बजा भी लेते हैं, किंतु पेशकार मात्र कायदे जैसी रचना नहीं है, अतः उसे कायदे जैसा नहीं बजाना चाहिए। गायन में बड़ा ख्याल प्रस्तुत करते समय धीमी लय में संबंधित राग की आलापी करना जिस प्रकार गायन शिक्षा की प्रगत अवस्था है और गायन की शिक्षण क्रिया में उसे बाद में सिखाया जाता है, पेशकार वादन की शिक्षण क्रिया भी वैसी ही है और होनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 264। 12वां है सात संगत का अध्ययन। सात संगत के अध्ययन में प्रत्यक्ष शिक्षा का भाग कम होता है। अलग अलग कलाकारों की सात संगत को जागरूकता के साथ सुनकर उसी के जरिए उस तंत्र का अध्ययन करके उसे आत्मसात करना होता है। साथ संगत में ठेका भरी, छोटे छोटे टुकड़े, मुखड़े आदि की मदद से कलात्मकता के साथ सम पर आने का रियाज करना आवश्यक होता है, किंतु इसे प्रमुखतः निरीक्षण के जरिए अवगत करने की आवश्यकता है। हर कलाकार को बार बार साथ संगत करते रहना, अपनी साथ संगत का निरीक्षण करते रहना, गायक वादक तथा श्रोताओं की प्रतिक्रिया के बारे में संवेदनशील रहना और अन्य श्रेष्ठ वादकों की साथ संगत का अध्ययन करना आदि मार्गों से अपनी साथ संगत की क्रिया का कौशल बढ़ाते रहना चाहिए। 13वां सुगम संगीत की साथ संगत का अध्ययन। सुगम संगीत में प्रभावशाली ठेके बजाना, विविध प्रकार की लगियां बजाना, उनके कलात्मक पलटी करना और रचना की सम को पहचान कर उचित छोटी तिहाई से सम पर आने का कौशल प्राप्त करना आदि के माध्यम से सुगम संगीत की साथ संगत का तंत्र सीखा जाए। 14वां वाद्य को सुरीलेपन के साथ मिलाना। संगीत के प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आवश्यक बात यह है कि वाद्य सुर में मिलाया हो। इसके लिए विद्यार्थी को स्वर ज्ञान की शिक्षा लेना आवश्यक होता है। तबले के विद्यार्थी को स्वरों के बीच के सूक्ष्म फर्क को पहचानने का नियमित रूप से स्वतंत्र रियाज करना चाहिए। तबला या तानपुरे को निश्चित स्वरों से मिलाने के लिए उसे रियाज में रोजाना 10 मिनट का समय देना चाहिए। साथ संगत एवं सोलो वादन के प्रस्तुतिकरण में भी अगर तबला सुर में न मिलाया हो तो उस प्रस्तुतिकरण की परिणामकारकता बहुत ही कम हो जाती है। श्रोताओं एवं कलाकार के चेहरे पर तबला सुर में न मिलाया जाने की प्रक्रियाएं अंकित दिखाई देती हैं। अगर तबला वादक के ध्यान में वे प्रतिक्रियाएं आ जाएं, तो वह बेचैन सा हो जाता है, वादन का उसका आत्मविश्वास नष्ट होता है और इस प्रक्रिया में वह चाट और स्याही पर के गूंज युक्त अक्षरों ता या तिन को भी गूंज को दबाकर बजाने लगता है, फलतः उसके ठेके की परिणाम कारकता नष्ट होती है। इस सब को टालने के लिए तबला हुक्मीपन के साथ कम से कम समय में सुर में मिलाना आना चाहिए। इस सबके लिए तबला सुर में मिलाने का नियमित रियाज करने की आवश्यकता है। तबले का अध्ययन कैसे किया जाए, इस संबंध में ऊपर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया गया है। प्रत्यक्षतः यह अध्ययन करते समय गुरु के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। पृष्ठ संख्या 265। अर्थात यह बताना जरूरी है कि इस ग्रंथ के प्राप्य ध्येय निश्चिति एवं प्रभावशाली शिक्षा पद्धति शीर्षक अध्याय में सूचित तंत्र की सहायता से अगर विद्यार्थी तबले का अध्ययन करें तो उसकी प्रगति की गति निश्चय ही बढ़ेगी। 15वां थियरी सिद्धांत की शिक्षा। तबले की शिक्षा को थियरी और क्रियात्मक इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। तबला एक प्रयोगशील कला होने से यह निर्विवाद है कि उसमें क्रियात्मक शिक्षा को महत्व होता है, किंतु मात्र क्रियात्मक के अभ्यास से प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण का स्तर ऊंचा होगा। यह धारणा गलत है। तबला वादन की थियरी अप्रत्यक्षतः तबला वादन का स्तर सुधारने में मदद पहुंचाती है। थियरी सीखते समय प्रत्येक थियरी के अंग का वादन के लिए क्या उपयोग हो सकता है, वह अंग वादन से किस प्रकार संबद्ध है आदि बातें विद्यार्थी अगर ठीक तरह से अपने गुरुओं द्वारा समझ ले तो उसे तो थियरी का लाभ हो ही जाएगा, साथ ही थियरी की शिक्षा में वह रस भी लेने लगेगा। थियरी में तो व्याकरण का महत्व बड़ा होता है। बोली भाषा के व्याकरण से भाषा शुद्ध होने में मदद मिलती है। उसी प्रकार तबले के व्याकरण से तबला वादन की शुद्धता एवं परिणाम कारकता बढ़ जाती है। 16. कला प्रस्तुतिकरण में रंजकता का असाधारण महत्व। कला प्रस्तुतिकरण का महत्वपूर्ण लक्ष्य है रंजकता निर्माण करना। तबला वादन को रंजक कैसे बनाया जाए यह थोड़ा बहुत सिखाया जा सकता है, किंतु उस शिक्षा से विद्यार्थी के वादन में रंजकता का निर्माण होगा ही सो बात नहीं है। कुछ लोगों की राय में रंजकता का कलाकार के मन में स्वभाव में निहित होना होता है। अगर वह वैसी हो तो उसके स्वभाव का प्रतिबिंब उसके वादन पर पड़कर वह रंजक होता है। प्रदीर्घ रियाज से हाथ साफ होगा, स्पष्ट होगा, उसका प्रस्तुत किया गया वादन प्रभावी भी हो सकेगा, किंतु वह रंजक होगा ही सो बात नहीं। रंजकता विहीन किंतु अभ्यासपूर्ण रियाज से कला प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को कला तपस्वी कहकर सम्मानित किया जाता है। विद्यार्थी अगर अत्यंत खुले दिल से किसी विशिष्ट घराने के अनुशासन के दबाव को मन पर न रखते हुए रंजकता निर्माण करने वाले श्रेष्ठ कलाकारों का वादन सुनता रहे और उनके वादन की रंजकता को समझ ले तथा उक्त वादन का जागरूकता के साथ अनुकरण करने का प्रयत्न करे तो उसके वादन में रंजकता निर्माण होने की संभावना अधिक है।